मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 10 दिसंबर 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और चूंकि मुलाकात 2 दिनों के अंतराल के बाद हो रही है, इसीलिए साथ ही साथ आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन भी करता हूं। और आप सबके साथ ही मित्रों, मैं अपने उन 2 नौजवान साथियों का विशेष रूप से स्वागत करता हूं जिन्होंने 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं गिरीश पाल, आप व्यारा गुजरात से हैं, और केशव भारद्वाज, आपका गांव है बाढ़, जिला पटना बिहार से हैं। तो गिरीश और केशव आज दोनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत प्रसन्नता पूर्वक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के रूप में मैं आपसे समझने की तकनीक के बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए इससे पहले 1-2 जो छोटी छोटी खबरें हैं उन्हें देख लेते हैं। कल के रेडियो न्यूज में आपने सुना होगा कि एक वाक्य सुना होगा कि हमारा जो पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन, जिसे हम शीतकालीन सत्र कहते हैं, कुछ ही दिनों के बाद शुरू होने वाला है, अभी शुरू ही होने वाला है। दोस्तों, इसमें एक शब्द आया था कि यह 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले संसद का अंतिम पूर्ण सत्र है। ये शब्द आपने सुना, ये वाक्य सुना, तो मैं अंतिम पूर्ण सत्र जो है इसके बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, होता क्या है कि हमारे सामान्यतया अगर कोई विशेष परिस्थिति ना आए तो संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला तो होता है अभी जो विंटर का शुरू हो गया, जिसे हम शीतकालीन सत्र कहते हैं। इसके बाद फिर बजट का सत्र शुरू होता है ना। इसके बाद फिर मानसून सत्र शुरू होता है। इसमें जो मानसून यानी कि बरसात के दिनों में जो सेशन होता है और ठंड के दिनों में जो सेशन जो अभी शुरू होने वाला है, ये थोड़े छोटे होते हैं, कम दिनों के होते हैं। लेकिन जो बजट सेशन होता है वो बहुत लंबा होता है, और आप देखेंगे कि बीच में गैप भी दे दिया जाता है। जैसे बजट सेशन शुरू हो गया तो एक बार बजट प्रस्तुत कर दिया गया, सारी कार्यवाहियां हो गई, फिर बीच में गैप दे दिया जाता है और फिर बजट पर बहस के लिए फिर से सत्र शुरू होता है। तो अब आप देखें कि अगर हम ये मान करके चलें कि चुनाव मई में होंगे या आप अप्रैल में किसी समय होंगे, तो पहली बात कि चूंकि जो बजट का सत्र होता है वो लंबा होता है, इसलिए शायद वो पूरा वक्त न मिल पाए सत्र के लिए। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, कि जो बजट सत्र होता है ये सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है, क्योंकि इसमें बजट पेश किया जाता है, राइट। तो अब चूंकि अप्रैल या मई में जब भी सरकार डिक्लेयर करेगी, जब चुनाव होंगे, तो स्वाभाविक है कि इसके बाद नई सरकार बनेगी, ठीक है। सरकार किसी की भी बने, जो नई सरकार होगी तो बजट तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होता है, उसी के आधार पर तो खर्चा और कमाई का ब्यौरा होता है, और वो पूरा का पूरा एक तरीके से नक्शा होता है, रोड मैप होता है। तो स्वाभाविक है कि जो नई सरकार आएगी, चाहे यही सरकार फिर से आ जाए या एकदम से नई सरकार आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो नई सरकार आएगी वो नए तरीके से चीजों को प्लान करेगी, तो उसका यह एक प्रकार से नैतिक मौलिक तो नहीं कह लीजिए नैतिक अधिकार है कि वो अपनी तरीके से चीजों को करे। तो इसका मतलब यह हुआ कि अभी जो सरकार सत्ता में है वह केवल थोड़े वक्त के लिए बजट पेश करेगी, जिसे आप कह लीजिए कि अंतरिम बजट पेश करेगी, क्योंकि बिना धन के तो काम चल नहीं सकता है। और जो हमारा जो सत्र होता है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है, वो आपको मालूम है कि मार्च अंतिम तारीख तक का होता है, 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो जाती है। तो 1 अप्रैल से आप खर्च कैसे करेंगे, तो बट नेचर कि उसके लिए भी संसद को व्यवस्था करनी होती है। तो जो इसके बाद का सत्र होगा, जो बजट सत्र होगा, उसमें सरकार को न तो पूरा समय मिल पा रहा है, और न ही आप यूं कह लीजिए कि संपूर्ण बजट प्रस्तुत करने का और उसे पारित करने का एक तरीके से अधिकार है। तो ऐसी स्थिति में इसे अंतिम पूर्ण सत्र कहा गया है। मेरी समझ से यह चीज क्लियर हो गई होगी। दूसरी जो एक खबर थी मित्रों, वो देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबर है और उसका क्या परिणाम होगा नहीं मालूम, ब्रेक्सिट समझौते को लेकर के है। आपको मालूम है कि जो ब्रेग्जिट यानी कि यूरोपियन समुदाय से जो ब्रिटेन के अलग होने का फैसला था जब जनमत कराया गया था तो उनमें बहुत कम का अंतर रह गया था। एक पक्ष वो था जो यूरोपीय समुदाय में बना रहना चाहता था, यूरोपियन यूनियन में, दूसरा वो था जो कहता था कि नहीं हम उससे अलग होंगे। इस पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, तो उनमें फासला बहुत कम था। तो अब जब एकदम स्थिति ये आ गई है कि अब ब्रिटेन उससे अलग होने ही वाला है, तो इंग्लैंड में, आपके ब्रिटेन में ही एक ऐसा वर्ग खड़ा हो गया है जो कहता है कि नहीं, ब्रेग्जिट से हमें बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा और हम अलग नहीं होना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि इसको किया कैसे जाए। तो अब ये पार्लियामेंट इसको अप्रूव करेगी, जनमत को पार्लियामेंट अप्रूव करेगी और अभी पार्लियामेंट में इस पर मतदान होगा। तो देखिए क्या होता है, पार्लियामेंट अप्रूव करती है ब्रेग्जिट को या नहीं करती है। तो इसको लेकर के ब्रिटेन में बड़ी चिंता है, क्योंकि अगर इसे अप्रूव कर दिया जाता है तो एक अलग एक जो वर्ग है वो इसके विरोध में खड़ा है, और अगर इसे डिसअप्रूव कर दिया जाता है तो जनमत ने इसे अप्रूव किया हुआ है तो उसके लिए एक पूरा का पूरा वर्ग खड़ा है। इसीलिए प्रधानमंत्री का वक्तव्य भी उसमें दिया हुआ था कि इससे बहुत बड़ी समस्या ब्रिटेन में पैदा हो सकती है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि घटना क्या रूप लेती है, लेकिन ये मान करके चलिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटना है जिस पर आपकी नजर थोड़ी सी होनी चाहिए। फ्रेंड्स आइए अब मैं बात करता हूं आज के मुख्य विषय पर, और मैं आपसे बात करने जा रहा हूं समझने की तकनीक पर। यह विषय खासकर मैंने इसलिए चुना है क्योंकि मेरे पास लगातार ईमेल के जरिए बहुत ही जायज अनुरोध किया जाता है, और वो ये कि सर जो आप क्वेश्चन लिखने के लिए देते हैं सैटरडे को तो उनके हमें आंसर प्रोवाइड करें, और बहुत अनुरोध के बाद भी मैं आप लोगों के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। इसके लिए मैं क्षमा भी चाहूंगा, और साथ ही साथ उसके कारण भी हैं। इसलिए कारण ये है कि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको बनी बनाई चीज दे करके आपको आपकी उस क्षमता से वंचित कर दूं जो आपके अंदर ही होनी चाहिए, क्योंकि आपको यह क्षमता पैदा करनी पड़ेगी। अगर मैं दे दूंगा तो आप शुरू से पंगु हो जाएंगे और मेरे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर आपके काम नहीं आएंगे। एक फॉर्मेट भर आपको मिल जाएगा बस, लेकिन फॉर्मेट से बात नहीं बनेगी, है ना। अगर आप तैरने के नियम पढ़ लेते हैं किसी किताब में तो ऐसा नहीं है कि आप नदी में तैर लेंगे या तालाब में तैर लेंगे, है ना। तैरना एक बिल्कुल अलग चीज है, नियमों को जानना बिल्कुल अलग चीज है, राइट। तो मित्रों इसी को ध्यान में रखकर के मैंने सोचा कि नहीं, अवसर मिलने पर मैं समझने की तकनीक पर भी आपसे कुछ बातें करूं। हालांकि ये भी एक आधी अधूरी सी ही बात होगी, क्योंकि समझने की जो तकनीक है वो मूलतः सच पूछिए तो आपके पढ़ने की तकनीक पर निर्भर करती है। पढ़ने की तकनीक कह लीजिए, पढ़ाने की तकनीक कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप विषय को समझेंगे नहीं तब तक लिखने की तकनीक भी समझ में आने वाली नहीं है। और कुछ बात यह भी हुई कि कल मैंने बिल गेट्स का एक स्टेटमेंट पढ़ा। बिल गेट्स आप जानते हैं आज दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति है, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह का नाम आपने सुना ही है, बिल गेट्स का नाम अननोन नहीं है। उनका मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा और उस इंटरव्यू में एक बहुत ही उन्होंने जबरदस्त बात कही, और मुझे लगता है कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मौजू है। हालांकि उन्होंने ये बात सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं कही है। उनसे ये पूछा गया था कि आप ये बताइए कि ये जो सफलता आपको मिली या दुनिया में और लोग जो सफल होना चाहते हैं, बहुत सरल तरीके से बताइए कि उनके लिए सीधा सा फार्मूला क्या है, सीधा और सरल फार्मूला बताइए आप। तो उन्होंने कहा कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है कि आप अपनी बात को दूसरों तक कितने अच्छे तरीके से पहुंचा पाते हैं। अब उनके ही शब्द आपको मैं पढ़ करके सुना देता हूं ताकि बीच में कोई करप्शन मतलब पोल्यूशन ना आ जाए। हमें ये समझना चाहिए कि परेशान होना ही सफलता पाने का एकमात्र जरिया नहीं होता। हम सब ज्यादातर परेशानी होते रहते हैं। मेरे हिसाब से तो सफलता पाने का एक ही फार्मूला है, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल करने की क्षमता नहीं है तो ये मायने नहीं रखता कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं। नोट कीजिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन करने की क्षमता नहीं है तो ये मायने नहीं रखता कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं, क्योंकि आप अपनी प्रतिभा को लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे। यह कुछ ऐसा ही होता है जैसे किसी को अंधेरे कमरे में इशारे करना। आपके इशारे कितने भी स्पष्ट हों, लेकिन सामने वाला उन्हें देख ही नहीं पाएगा। यह उन्होंने कहा। सीधी सी बात है कि आप अंधेरे कमरे में चाहे कितने भी एक्सपर्ट हों इशारे करने के और कितने भी साफ तौर पर इशारे कर रहे हों, लेकिन अगर कमरे में अंधेरा है तो जिसे आप इशारे से बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, वो आपके इशारों को देख ही नहीं पा रहा है। तो साफ सी बात है, स्पष्ट सी बात है कि वह उसे समझ ही नहीं पा रहा है। जब आपकी बातों को समझ ही नहीं पा रहा है तो आपकी बातें चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण हो, कितनी भी कीमती हो, कितने भी प्रभावशाली हो, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। दोस्तों, अब आप इसे सिविल सर्विस की प्रिपरेशन पर अप्लाई कर लीजिए। यानी कि हम चाहे कितने भी प्रतिभाशाली हों, चीजों को हमने खूब रट लिया है, चलिए हमने उसे खूब समझ भी लिया है, लेकिन अगर हम उसे एग्जामिनर तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं तो सीधी सी बात है कि फिर हमारी वह प्रतिभा, हमारा वह ज्ञान, हमारे सूचना का भंडार, हमारा वह परिश्रम कोई मायने नहीं रखता। इसे ही उन्होंने कहा है कम्युनिकेशन स्किल। इसे ही आप चाहे तो यहां कह सकते हैं आंसर राइटिंग। और ये आंसर राइटिंग आप दो तरीके से करते हैं। आप मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं और इंटरव्यू में आप आंसर स्पीकिंग करते हैं। प्री का कोई रोल है नहीं सिवाय इसके कि वो आपको मेंस तक पहुंचा देता है। जो आपकी सफलता को निर्धारित करता है वह मूलतः मेंस और इंटरव्यू है, और दोनों में आपको कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत होती है। मित्रों, आज तो मेरे पास वक्त बहुत ज्यादा नहीं है कि मैं आप लोगों को इसके बारे में ज्यादा कुछ बता सकूंगा, लेकिन फिर भी मैं एक वाक्य आप लोगों को दे रहा हूं। आप लोग इस वाक्य को अपने ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। कल मैं इसे आप लोगों को अपने तरीके से थोड़ा बहुत समझाऊंगा, राइट? कार्ल मार्क्स का एक वाक्य है, कोई भी सामाजिक व्यवस्था तब तक स्पष्ट नहीं हुई जब तक कि उसकी जरूरत पूरी करने वाली सभी उत्पादक शक्तियां पूरी तरह विकसित नहीं हो गई हों, और वह तब तक पुरानी व्यवस्थाओं का स्थान नहीं लेती जब तक कि पुराने समाज के ढांचे में उनके अस्तित्व की भौतिक परिस्थितियां तैयार नहीं हुई हों। मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी सामाजिक व्यवस्था तब तक स्पष्ट नहीं हुई जब तक कि उसकी जरूरत पूरी करने वाली सभी उत्पादक शक्तियां पूरी तरह विकसित नहीं हो गई हों, और वह तब तक पुरानी व्यवस्थाओं का स्थान नहीं लेती जब तक कि पुराने समाज के ढांचे में उनके अस्तित्व की भौतिक परिस्थितियां तैयार नहीं हुई हो। यूं कह लीजिए कि आपको इसे एक्सप्लेन करना है, या आप एक टीचर हैं, आप एक प्रोफेसर हैं, और आपको अपने स्टूडेंट्स को क्लास में इसे समझाना है कि कार्ल मार्क्स इसके जरिए क्या कहना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ बेहतर होगा, देखिए, समझने और समझाने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम उदाहरण लेकर के आए दिमाग में कि ये तो सैद्धांतिक बात है, पूरी तरह से सैद्धांतिक बात है। और हमारे स्टूडेंट्स के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो ये कि वो कार्ल मार्क्स के इस कोटेशन को याद भी कर लेंगे, और जहां उन्होंने याद किया है, जिस चैप्टर के लिए उन्होंने याद किया है, उस चैप्टर में इसे वो जो कहते हैं लिख आएंगे। तो ऐसे में होता क्या है, होता यह है कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, जिसे आप कह लीजिए कि यह एक प्रकार का रिंच है या पाना है, आप देखते हैं ना, रिंच है, रिंच कह लीजिए, पाना तो नहीं, या प्लास कहना ज्यादा अच्छा होगा ना, जिसमें आप नट को पकड़ करके खोल देते हैं। तो प्लास की खासियत क्या होती है कि प्लास एक हिस्सा नीचे होता है, एक हिस्सा ऊपर होता है, उससे आप किसी भी नट को पकड़कर खोल सकते हैं। जबकि जो रिंच होता है या पाना, रिंच पाना, उसका तो सब कुछ फिक्स होता है, उसका साइज फिक्स है, तो उसका इस्तेमाल आप केवल उसी साइज के नट को खोलने के लिए कर सकते हैं। जबकि प्लास के साथ ऐसा नहीं, प्लास से तो आप किसी भी नट को खोल सकते हैं क्योंकि उसके हिसाब से आप प्लास के साइज को फिट कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। तो इस तरह के जो कोटेशंस होते हैं ये सैद्धांतिक होते हैं, फिलोसफिकल होते हैं, ये प्लास की तरह होते हैं, जिनका इस्तेमाल आप कई जगहों पर कर सकते हैं। हम स्टूडेंट के रूप में जब इन्हें रट लेते हैं तब हम इसे एक के लिए फिक्स कर देते हैं कि वह टॉपिक अगर आया तो हम इसकी इसका उपयोग कर लेंगे, अगर वह टॉपिक नहीं आया तो हम इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। समझने की यह सबसे बड़ी खूबी होती है कि वह आपके ज्ञान को क्लास में कन्वर्ट कर देती है। तो मित्रों, मैंने यह वाक्य आप लोगों को दिया है, आप लोग इस पर थोड़ा सा काम करें। मोस्ट प्रोबेबली कल इस पर मैं थोड़ी सी बात आप लोगों से डेफिनेटली करूंगा। तो मित्रों, मुख्य विषय के बारे में आज बस इतना ही। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं। दिलीप कोच, आप असम से हैं। विशाल वाजपेयी, आमिर शेख, विवेक कुमार सौरभ, शैलेश पटेल, आप रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं, और प्रेम पाल दिल्ली से। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।